ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर बीकानेर बांसवाड़ा सूरतगढ़ डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी।
ऊंटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर।
राम 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 राम। सगला सुनन वाला मारा भाई बहना ने धापू का कीरा घना न घना राम राम सा। अरे भुलिया के करे है आज तू किताब पढ़न लाग रही हो कहीं? अरे बाबी इतनी मोटी किताब। छोरो बन गयो पड़ेसरी चिंतिया आखे देसरी। वारे भोलिया वा।
हाँ काकी आज लोड पड़ गी।
लोड पड़ गी? इसी के लोड पड़ गी?
अरे काकी बस में कोनी टोडियो अरे बिनो फिरा है मोडियो। हमें के है के माने ज्ञान तो है कोनी अरे ऊपर से आज चौपाल माए देनी पड़े जानकारी। तो आजरी जानकारी के ज्यादा दूध देवन वाली ऊंटारी नस्ल किसी किसी है पढ़ू काई कर तो मान तो जानकारी ही कोनी। तो सोदन सारू आ किताबड़ी हाथ लाग गई हूँ नस्ला सोदई हो गई तम ध्याई गया।
वारे भूलिया वा। तो किताब माए किसिया ऊंट मिले है? ऊंट तो रोई में मिले बावड़ा मिनक ने फिर ही ज्ञान हुए। चल तू ना घनी आख्या फोड़ तेरी समस्या रो निवेड़ हूँ शोध लियो है। आज रे प्रोग्राम माए इनी विषय माथे जानकारी देबा सारू मैं नूतो मेलियो है डॉक्टर वेद प्रकाश ने।
बहुत अच्छी बात है।
आप उस अनुसंधान केंद्र बीकानेर माए वरिष्ठ वैज्ञानिक है।
अच्छा किन है डॉक्टर साहब? ते तो एकला आया हो।
यहाँ झुकर झुकर कहीं देखे है डॉक्टर साहब कोई मारे झोले माए थोड़ी बैठा है। वासियों काना बाती पर बात हुई जनाबे कहो के सही टाइम पर पूछ जासू बस टेम हुआ ही है आवता ही वेला।
राम राम धापू काकी। राम राम भोलू काका।
ले आई गया डॉक्टर साहब। तो राम राम डॉक्टर साहब। राम राम
राम राम राम राम राम राम डॉक्टर साहब।
बहुत राम राम
राम राम। आप तो माने ही आज काको बना दियो मुंह तो भतीजो बने फिरो इतना दिन नहीं।
कई हाल चाल है डॉक्टर साहब?
सब ठीक है।
तो चलो फिर सवाल और सिलसिला शुरू करा।
हाँ बात तो ठीक है पर पहला सेहत पानी तो पूछ लियो।
तू पूछ पछे।
हाँ डॉक्टर साहब किया है सेहत पानी ठीक है? बिया तो तकड़ा लागन लाग रहे हो।
एकदम ठीक ठाक है। और आज तो हमारा विषय भी ऐसा है कि कोरोना काल में इसके दूध पीने से आदमी की सेहत पानी तो ऐसे ही अच्छी रहेगी।
अच्छा आ बात
बताई डॉक्टर साहब।
वाह वाह।
तो भोलिया डॉक्टर साहब सु प्रश्न पूछना शुरू करा।
हाँ प्रश्न पूछना है कि भाई आज आपां ऊंटारी नस्ल रे बाबत बात कर से जी की ज्यादा दूध देवे तो इनमें विस्तार से अपन यहाँ जान लेनो है कि ऊंटारी कितनी नस्ल है बारा के गुण धर्म है बे सगड़ी बात ते जानो ही हो तो पूछो फिर पहलो सवाल।
तो डॉक्टर साहब मारो पहलो सवाल ओ है कि भारत में ऊंटा की कितनी नस्ल है और ऊंट नस्ल में कोई दूध उत्पादन के लिए किसी उपयुक्त है?
भारत में ऊंट की कुल 9 नस्लें हैं जो पंजीकृत है और ऊंट की आबादी जो राजस्थान में है तो कुल मिलाकर 2.5 लाख है।
अच्छा जी।
और जो नस्लों में 9 नस्लें हैं उसमें से ज़्यादातर नस्लें राजस्थान की है और इसके अलावा मध्य प्रदेश गुजरात की नस्ल है। तो जो नस्ल है सबसे पहले बीकानेरी नस्ल है वो बीकानेर जिले में पाई जाती है।
अच्छा जी।
और ये नस्ल है जो बोझा ढोने के लिए काफ़ी कारगर होता है। इसके अलावा इसमें दूध उत्पादन क्षमता भी ठीक ठाक होती है और ये नस्ल सारी नस्लों में सबसे ऊंची नस्ल होती है।
अच्छा।
दूसरी नस्ल है जैसलमेरी नस्ल और ये मध्यम आकार की नस्ल होती है और ये जैसलमेर ज़िले में मुख्य रूप से पाया जाता है और जैसलमेर ज़िले में के लोग के जीवन में तो ये काफ़ी इस नस्ल की महत्ता है और यहाँ तक कि एक कहावत है कि अगर आपके पास जैसलमेर में ऐसी कहावत है कि अगर आपके पास सवारी के लिए ऊँट नहीं है तो आपका इस दुनिया में रहना ही बेकार है।
अच्छा।
इसके अलावा मारवाड़ी नस्ल है जो मारवाड़ क्षेत्र में है। इसमें जोधपुर, जालौर, बाड़मेर का क्षेत्र है, यहाँ पर ये नस्ल होती है। इसके अलावा चौथी जो नस्ल जालौरी नस्ल है, और ये ऐसा माना जाता है कि मारवाड़ी और जैसलमेरी का मिश्रण है, और इसको भी एक जगह से दूसरे जगह सामान ले जाने के लिए उपयोग में लिया जाता है।
अच्छा।
मेवाड़ी नस्ल है जो कि उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, और इसका सिर का आकार बहुत बड़ा होता है, और इसकी खास विशेषता होती है कि इसकी बाल की बनावट ऐसी होती है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मक्खी और मच्छरों के दंश से इसको बचाती है। इसके अलावा मेवाती नस्ल है जो अलवर, भरतपुर के क्षेत्र में पाया जाता है। कच्छी नस्ल है जो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में होती है।
अच्छा जी।
और गुजरात की दूसरी जो नस्ल है खराई नस्ल है, और खराई नस्ल की विशेषता है कि ये समुद्री इलाकों में भी रह सकती है और सूखे जमीन पर रह सकती है।
अच्छा,
और ये समुद्री पानी में भी तैरने में सक्षम होता है, और जो समुद्र के तट पर जो एक मैनग्रोव घास जंगल होते हैं उसमें ये भोजन की तलाश में 2-3 किलोमीटर तक आराम से तैर सकता है। और आप देखें तो ये मुंद्रा, लखपत जो रन ऑफ कच्छ के इलाके में पाया जाता है।
अच्छा जी।
और जो अंतिम नौवीं नस्ल है वो मालवी है, ये मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में होता है, और ये मंदसौर और नीमच जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिले हैं, वहाँ पर होता है। इसका रंग जो हल्का होता है। अब ये 9 नस्लों में केंद्रीय उष्ट अनुसंधान संस्थान में हम 4 नस्लों के ऊपर शोध कर रहे हैं।
अच्छा।
इसके अलावा जो हमारे पास जानकारी है उससे हमने पाया है कि इन नस्लों में मेवाड़ी नस्ल और कच्छी नस्ल, और अगर सारे को देखें तो सब कच्छी नस्ल की दूध उत्पादन क्षमता सबसे अच्छी है। तो अगर कोई पशुपालक दूध उत्पादन के लिए ऊँट पालना चाहते हैं तो उन्हें कच्छी नस्ल और मेवाड़ी नस्ल के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए।
बहुत अच्छी बात है।
इसके अलावा भी मैं बताना चाहूँगा कि दूसरी नस्लों में भी कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी दूध उत्पादन क्षमता बहुत अधिक होती है। ऊँट की संख्या कम होती है, लेकिन सब नस्ल में कुछ न कुछ ऐसे पशु हैं जिनकी दूध उत्पादन क्षमता ज़्यादा है। तो आप उन जानवरों का चयन करें, और उससे है अगर उसकी बार बार आप उसी के वंशावली को आप चयन करते रहेंगे तो आपका टोले का दूध उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगा।
वाह डॉक्टर साहब, तो 9 नस्ला की विस्तृत जानकारी दे दी डॉक्टर साहब भोलिया।
दापू काकी, और मारा दिमाग में आ गया अगला सवाल। देखो आप नस्लारा भेद बताया, तो बेदरी बात जनाब है, तो एक बात आ भी है कि जिया दुधारू ऊंटनी है बीरो जी को अन्य दुधारू पशु है दूसरा बीजा बांसुबा किन प्रकार से अलग हुआ है, वो बड़ो महत्वपूर्ण सवाल है, तो थोड़ा सा डॉक्टर साहब पूछ लिया।
देखिए ऊंट को तो हम अभी तक दुधारू पशु के रूप में नहीं पालते आए हैं, गाय भैंस से जो हमारे मुख्य दुधारू पशु हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो हमारे शोध हैं उससे पता चला है कि इसका दूध में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, खास करके जो इस कैंसर, टीबी, मधुमेह, जो डायबिटीज जो है आम बोलचाल की भाषा में जिसे डायबिटीज कहते हैं, इसके अलावा मंद बुद्धि जो ऑटिज्म की बीमारी होती है।
अच्छा,
उसमें इसके दूध के बहुत फायदे पाए गए हैं।
बहुत अच्छी बात।
और जब लोगों को इसके बारे में जानकारी बढ़ती गई तो ऊँटनी की दूध की मांग बढ़ने लगी, और उसके बाद ही इसको दुधारू पशु के रूप में विकसित करने के लिए लोगों के मनों में विचार आने लगा। लेकिन इसकी जो दूध देने की क्षमता है और दूध से संबंधी जो इसके लक्षण हैं वो अन्य दुधारू पशु गाय भैंस से बहुत तरीके से भिन्न है। जहाँ तक आज गाय भैंस में आप बिना बछड़े का आप दूध का उसमें श्राव हो जाता है, इसमें अगर आपको दूध का श्राव करवाना है जिसको लेट डाउन की अंग्रेजी में बोलते हैं, कॉमन भाषा में लेट डाउन,
और आपने राजस्थानी में पाव सुनो।
हाँ, अगर दूध को पौसने के लिए इसमें बच्चे की जरूरत पड़ती है। अच्छा। बिना बच्चे के ऊँटनी जो है पौसती नहीं है।
अच्छा।
तो एक जो सबसे जरूरी चीज है कि अगर आप ऊँट डेयरी लगाना चाहते हैं तो आपको इसके बच्चे की अच्छी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा किसी कारण से बीमार हो गया, मर गया, तो उसके बाद वो ऊँटनी दूध आगे नहीं देगी। दूसरी है कि
आपने डॉक्टर साहब ऊँटारी दूधरी भी डेयरी लगाएगी?
हाँ जी, ऊंट की दूध की डेयरी लगती है और हमने 2008 में उष्ट अनुसंधान केंद्र में इसके ऊपर शुरू किया था और राजस्थान में अभी कम से कम 15 लोग ऐसे हैं जो कि इसका व्यवसाय भी कर रहे हैं।
बहुत बढ़िया बात है।
तो इसके अलावा जो है कि अन्य पशुओं की गाय भैंस की तुलना में ये ज़्यादा लंबा समय तक दूध दे सकता है। अच्छा, जहाँ गाय भैंस से 10 महीने के बाद दूध देना लगभग बंद कर देती है, इससे आप 12 महीने से 16 महीने तक आसानी से दूध ले सकते हैं।
अच्छा,
इसके अलावा खान पान की इसको बहुत ज़्यादा इसकी खुराक में कोई स्पेशल चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, नॉर्मल खान पान से भी ये आपको दूध आप इससे ले सकते हैं। इसके अलावा इसका दूध में जो गुण होता है, जैसे कि दूध में फैट है, वसा की मात्रा है, अन्य पशुओं से कम होती है, उसके अलावा प्रोटीन है, प्रोटीन और लैक्टोज ये भी कम होती है, लेकिन जो एंटीऑक्सीडेंट जो हमको शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है वो आयरन, उसके अलावा विटामिन सी, जिंक, ये सब की मात्रा अन्य पशुओं से बहुत ज़्यादा होती है। लैक्टोफेरिन भी एक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला तत्व होता है, उसकी मात्रा भी इसमें अन्य पशुओं से के दूध से ज़्यादा होती है। इसके अलावा इंसुलिन और इंसुलिन जैसे प्रोटीन जो है, इसकी मात्रा भी अन्य पशुओं के दूध से, गाय भैंस के दूध से बहुत ज़्यादा इसमें होती है।
ज़्यादा हुए, बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब। अब आपने दापू काकी ठीक है ढूंढ ला गया।
मैं अगलो प्रश्न के बारे में सोचती रे भूलिया।
अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा।
हाँ, कि अगलो प्रश्न कहीं पूछो जावे डॉक्टर साहब, वो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब दे रिया है और आप दूध उत्पादन की बातें कर रहे हैं। तो डॉक्टर वेद प्रकाश जी, हूँ जानना चाहूँ कि ऊँटनिया में दूध उत्पादन बढ़ाने की जरूरत क्या भी पड़े
इसकी, क्योंकि अभी तक जो ऊँट को हम एक ऐसे पशु के रूप में मानते आए थे, पालते आए थे, जो कि बोझा ढोने के काम में, कृषि के कार्य में, या फिर एक जगह से दूसरे जगह आवागमन के काम में इसको लिया जाता रहा है, लेकिन जैसे जैसे मशीनीकरण होने लगा तो इसकी उपयोगिता आज किसी भी छोटे छोटे दूर कस्बे में भी जाना संभव हो गया है। पहले रोड नहीं थे और इस तरह के साधन भी नहीं थे, लेकिन आज ये सब नए नए साधनों के आने से आज इसकी उपयोगिता धीरे धीरे कृषि कार्य में, आवागमन के लिए, बोझा ढोने में कम हो रही है। तो ऐसे में इसकी उपयोगिता को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हम दूसरे इसके गुणों की भी खोज करें और इसमें जो लोगों और साथ में जब इसके दूध के गुणों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होने लगी, खास करके इसके औषधीय गुण में, तो ये महसूस होने लगा कि हमें इसकी दूध उत्पादन क्षमता को बढ़ानी चाहिए ताकि हम दूसरे के जो ऐसे लोग हैं जिनको ऊँटनी के दूध की ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत को हम पूरा कर सकें। जैसे एक अनुमान है कि भारत में लगभग 7 करोड़ डायबिटीज के मरीज हैं, उसमें से 10% जो टाइप 1 डायबिटीज के, तो अनुमानतः 70 लाख लोग ऐसे हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, और अगर इनकी आधा लीटर की अगर जरूरत देखें प्रतिदिन की, तो हमें रोज दिन 35 लाख लीटर दूध की जरूरत है।
अच्छा,
तो आज जो आबादी है और जो आज ऊँटनी की उत्पादकता है उससे ये संभव नहीं है, इसलिए इसकी दूध उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है।
बहुत ही बढ़िया बात आप कही डॉक्टर साहब, 35 लाख लीटर दूध अपन रोज चाहिए, बहुत बड़ी बात है। इतना उत्पादन अपन करना चाहिए और यही खातर अपन किसान भाइयों ने, पशुपालकों ने तैयार करना है कि भी ज़्यादा से ज़्यादा ऊँट पाड़ो और ऊँटनी जी को दूध है बीरो काम जी को है वो विकसित करो और ज़्यादा। अच्छा दापू काकी,
हाँ।
अब देखो अगलो सवाल मैं पूछ लूँ।
बिल्कुल पूछ लो
डॉक्टर साहब, दूध उत्पादन बढ़ाने खातर चयन की विधि क्यों होनी चाहिए?
ये आप दूध उत्पादकता बढ़ाने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होता है वो चयन की पत्ती ही होती है, क्योंकि अगर आपके टोले में अच्छे ऊँट और ऊँटनी हैं तभी आपके टोले की उत्पादकता बढ़ेगी। और इसके लिए जो अभी तक जो हम चयन के लिए क्या करते आए थे कि हम जो भी नर था, नर की शरीर की बनावट के आधार पर ही हम उसका चयन करते थे, लेकिन अब हमने शारीरिक विशेषता के अलावा नर के माँ के दूध का उत्पादन, साथ ही और भी जो मादा संबंधित हैं नर के, उसके दूध उत्पादन क्षमता को भी ध्यान में रखकर ही हम नर का चयन करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी बिंदु हैं जिनको देखने की ज़रूरत है, जैसे शरीर का रंग, तो आप अगर किसी भी चाहे नर या मादा का चयन करते हैं तो नस्ल के अनुरूप जो जानवर हैं शरीर के रंग में वैसे नस्लों का चयन करें
जी साहब।
और अगर अगर रंग का बहुत अंतर होता है तो उसको हम अवांछित मानते हैं और वैसे का चयन नहीं करें। इसके अलावा शरीर पर बालों का वितरण कैसा होना चाहिए, ये शरीर पर समान रूप से फैला हुआ होना चाहिए और किसी एक शरीर के भाग पर सीमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई जानवर को पूर्व में अगर खुजली होती है तो कुछ भाग में बाल उगते नहीं हैं। तो अगर आप वैसे जानवर का चयन करते हैं, इसका मतलब वैसे जानवर को आप चुन रहे हैं जिसमें कि बीमारी की संभावना ज़्यादा होती है। एक शोध में ऐसा भी पाया गया है कि जो रायका समाज जो इनको पालते हैं और जो इसका दूध का नियमित सेवन करते हैं, उनके परिवार में या उन लोगों में डायबिटीज़ की जो संख्या है शून्य थी।
अच्छा।
यही SP मेडिकल कॉलेज में शोध हुआ था, उन्होंने इसके सर्वे किया था और उसमें डायबिटीज़ की वाले लोग शून्य के बराबर थे। तो इसलिए इसके दूध के तो बहुत फायदे हैं। इसके अलावा हमने इसके TV में भी इसके ऊपर शोध किया कि TV में भी क्या फ़ायदा होता है, तो TV में भी इसके ऊपर फायदा पाया गया। SP मेडिकल कॉलेज के साथ काम करने पर यह भी फायदा पाया गया। इसके अलावा डायबिटीज़ में तो काफ़ी प्रयोग हुए, पूरे दुनिया में इसके ऊपर काम हो रहा है और उससे तो फायदा होता ही है, खास
तो
करके टाइप 1 डायबिटीज।
कोरोना जैसी महामारी में भी ये बहुत फायदा है डॉक्टर साहब।
आप देखिए इसमें विटामिन सी की मात्रा, क्योंकि हमें डॉक्टर विटामिन सी की सलाह देते हैं कि आप इसको लें, तो विटामिन सी की मात्रा जो है इसमें ज़्यादा होती है अन्य पशुओं के दूध से। तो आप लेंगे तो आपको कोई वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन विटामिन सी के साथ इसका संबंध लगा के आप कह सकते हैं कि इसका फायदा कोरोना बीमारी में भी हो सकती है।
वाह डॉक्टर साहब, जदी तो कहवे भूलिया कि अकल बिना ऊंट उबाना फिरे, है नहीं? तो बुद्धि सु काम करनो बहुत जरूरी है। और आप बात कर रहे हैं ऊंट रे दूध री, आप बात कर रहे हैं ऊंट रे दूध री, तो पहला सुनना है गीत लो।
हाँ भाई, डॉक्टर साहब ने गीत भी सुनावा, जीती ताल गीत चाले बीती ताल जिको है। आपा भी आज डॉक्टर साहब दूध री थैली लेके आया है तो वाह, ऊंटनी का दूध की चाह फिर बनवा के बढ़िया से प्या दे आपा।
आप बात कही, आप बात जोरदार कही। चलो सर सुनो गीत।
Thank you. सूरज बन हे मरवण, मैं हूँ चांद गोरी थारो, तू है मारी चांदनी।
किसान भाइयों राम राम। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र जो पिछले 37 वर्षों से इस देश की सेवा में लगा हुआ है, अब वो ऊंटारी बातें के माध्यम से आप सब तक पहुंचना चाहता है। तो मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपके जो है ऊंटों के हर विषय के बारे में जो है आपको चर्चा करेंगे और आशा करता हूँ कि आप सब इसका बहुत फायदा उठाओगे।
हाँ तो दापू का की गीत सुनियो
सुनियो सा
और साथ सुनियो संदेश डॉक्टर राजेश कुमार सावड़ साबरो, आप डायरेक्टर है उष्ट अनुसंधान केंद्र रामायण
और सागे सागे चाह भी पी ली ऊँट रे दूध री।
बात तो डॉक्टर साहब ने पूछना भी मारा चाह किया मड़ी।
बहुत अच्छा, आप लोग को भी मजा आया होगा।
अब तो रोज जाना पड़ेगा माने।
तो डॉक्टर साहब अब प्रश्न पूछना शुरू करा फिर से।
हाँ।
मैं पूछना चाहूँ डॉक्टर साहब कि आप बात करा वंशावली री आंकड़ा प्रबंधन री, तो दुग्ध उत्पादन हेतु चयन वास्ते वंशावली और आंकड़ा प्रबंधन को काई महत्व है?
देखिए चयन की जो प्रक्रिया होती है चाहे किसी चीज़ के लिए हो, दूध के लिए हो या वजन शरीर भार के लिए हो, तो उसके लिए तो आपको जब तक जो भी पशु का चयन कर रहे हैं उसके वंशजों के बारे में जानकारी नहीं होगी कि उसके वंशज जो थे उसमें कितनी दूध उत्पादन क्षमता थी, उसके बच्चे थे उनके जीवन काल में उनके कितनी दूध उत्पादन क्षमता थी, तो अगर इसका ज्ञान नहीं रहता है तो हम सही जानवरों का चयन नहीं कर सकते हैं। और जो पशुपालक खास करके ऊँट पालक हैं जो रायका समाज हैं, वो तो उनमें एक ये वो जो है काफ़ी सधे हुए ब्रीडर होते हैं।
अच्छा जी, अच्छा।
और उनको तो 7-8 पीढ़ियों तक को सारी वंशजों को याद रखते हैं और खास करके ऊँटों में हर पशु का एक नाम होता है।
अच्छा।
उटनी और उसमें मादा के अनुसार एक मादा का नाम सबको पता होता है उटनी का, और जितने भी बच्चे होते हैं वो उस मादा के नाम के हिसाब से जाना जाता है। तो ये रायका समाज तो, लेकिन जब हम इसकी डेयरी लगाएंगे तो वहाँ पर हमको तो हर चीज़ की हर वंशज के बारे में जानकारी के लिए हमें इसकी एक नंबर देनी चाहिए। और नंबर जो है जैसे कि कोल्ड ब्रांडिंग होती है जिसमें हम इसमें हर जानवरों का ब्रीड नस्ल के हिसाब से नंबर देते हैं। आजकल हम लोगों ने तो माइक्रोचिप भी शरीर में डालकर उसकी नंबर देना शुरू किया है।
अच्छा।
इससे क्या होता है कि आप उसकी सही पहचान कर सकते हैं।
अच्छा।
और जब सही पहचान करेंगे तो आपको उसके आंकड़े प्रबंधन करने में बहुत आसानी होती है।
तो डॉक्टर साहब आ तो आप बहुत ही उत्तम जानकारी दी मालूगा ने। तो अब डॉक्टर साहब मैं जानना चाहवा कि मारा जो पशुपालक भाई और बहन है बाने आप कई संदेश देवनो चाहो।
मैं खास करके ऊँट पालक भाइयों को सलाह देता हूँ कि आप ऊँट दूध व्यवसाय में आगे आइए, इसमें असीम संभावनाएं हैं, आप इससे अच्छा लाभ कमा सकते हैं और अच्छे नस्ल का चयन करें जो दूध उत्पादक हो, और बहुत सारे लोग इसमें सफल भी हुए हैं। और ऊँट को दुधारू पशु के रूप में आप इसको पालना शुरू करें और इससे आपकी आमदनी अच्छी होगी, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसे पालने का कोशिश करेंगे और सफल भी होंगे। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने भी अरब चालता चालता लास्ट में मारो सवाल है छिकड़ ले इससे में कि जिया और डेयरी रो विज्ञापन आप देखा टेलीविजन में अखबारा माया कर रहे भैया ऊँटनी रे दूध रो विज्ञापन कौन देखियो आज तई वो कराओ नहीं ध्यान की
ऊँटनी इसका कारण तो मतलब विज्ञापन आप क्योंकि इसमें बड़ी कंपनियां अभी नहीं आई है बहुत कम है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आप आया और इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बताई आप तो मतलब जी का है सारा मैं आंकड़ा ले रहा है आज। तो चला फिर दापू का की
चला भूलिया। तो डॉक्टर साहब अब आज्ञा दे रहा हूँ सर गणा गणा
राम राम
राम राम राम राम राम राम।
ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी।
ऊँटारी बातों के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर।